Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि खुशी कैसे हमेशा कायम रह सकती है और उसके सरल उपाय क्या हो सकते हैं। ए, एटीट्यूड और बी, बैलेंस पे बहुत सुंदर हमारी चर्चा चल रही थी। कल ही हमारी एक बहन ने बहुत प्यारा सा एटीट्यूड के ऊपर सुंदर मैसेज भेजा है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हैं श्रुति बुधिया जी, जो कोरबा से हैं, और ये लिखती हैं, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाई फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंस। सचमुच कितनी सुंदर बात है, यदि एटीट्यूड अलग है तो सिचुएशन भले ही दोनों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन उसके लिए अलग अलग है। एक का समाधान कारक हो सकता है और एक का समस्या कारक हो सकता है। तो वास्तव में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, जिस पर कल बहुत गहराई से हम लोगों ने चर्चा की थी और बैलेंस की चर्चा हो रही थी। भ्राता जी हमें कह रहे थे कि हर प्रकार का बैलेंस जीवन में बहुत आवश्यक है, और कहा जाता है कि जहाँ बैलेंस है वहीं हमें ब्लेसिंग प्राप्त होती हैं। तो आइए आज पुनः हम बी को आगे बढ़ाते हैं और भ्राता जी का आज की इस कड़ी में स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स
राता जी। बैलेंस की कल हम चर्चा कर रहे थे कि बैलेंस बहुत सुंदर हो, इस चर्चा को आज हम पुनः आगे बढ़ाना चाहेंगे आपके साथ।
एटीट्यूड्स अगर सॉफ्ट एंड स्वीट हों
जी,
तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। बैलेंस तो एक बहुत अच्छी चीज है। पहले भारत में तो बहुत ज्यादा नट लोग खेल दिखाया करते थे। एक रस्सी हमने भी देखे, रस्सी बांधी है दो पिलर चारों ओर गाड़ के, और वो हाथ में डंडा लेके उस रस्सी पे चल रहा है। हमने प्रैक्टिस की, लगता तो था चल तो सकते हैं। बैलेंस, वो जो हाथ का डंडा था उससे वो बैलेंस कर लेते थे बॉडी के वेट का। तो वास्तव में बैलेंस चमत्कारिक स्वरूप दिखाता है कहीं कहीं, लेकिन है तो चमत्कार और कुछ नहीं, केवल संतुलन का चमत्कार होता है। तो हम भी अपने व्यवहार में, वाणी में, अपने अधिकारों में सुंदर संतुलन अवश्य लाएं। यहाँ से जाने के बाद कल मैं एक व्यक्ति को और देख रहा था जो किसी बड़े पद पर है, बड़े अकड़ में रहता है, बस मेरी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए, और वैसे बड़ा स्वीट है बाहर से। तो देखिए, ये इम्बैलेंस मनुष्य की पर्सनैलिटी पर गहरा प्रभाव डालता है। तो लोग पीछे जाके यही कहते हैं, बाहर से तो बड़ा स्वीट बनता है पर है बड़ा कड़क। तो
शायद ये उनके लिए बैलेंस हो, स्वीटनेस का और कड़कनेस का।
दोनों के बैलेंस की तो जरूरत ही नहीं, जरूरत इस चीज की है। देखिए, परिवार में मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं।
कल भी भ्राता जी से पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक बात ध्यान में आ रही है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाता कि मुझे बैलेंस कैसे रखना है, और वास्तव में इस बैलेंस की आवश्यकता भी है। शायद वो इस चीज को यदि समझ लेता है तो सारी चीज उसके लिए
बिल्कुल। इसलिए हम एजुकेट करना चाहते हैं, ये संपूर्ण समाज के लिए है। एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, घर में माँ बाप हैं, मान लो उनको चार बच्चे हैं, मैं माँ बाप का उदाहरण लेता हूँ। अब माँ बाप को उन्हें प्यार भी बहुत देना है, लेकिन वो कभी कभी ये भी देखते हैं कि बच्चे प्यार में थोड़े बिगड़ भी रहे हैं। अभी प्यार है तो वो उन्हें ये नहीं कहते टीवी ना देखो, पढ़ो, क्योंकि प्यार है। अब वो टीवी देख रहे हैं बच्चे या ज़्यादा खेल कूद कर रहे हैं, तो प्यार है इसलिए वो उसको पढ़ाई के लिए आग्रह नहीं करते। तो वहाँ माँ बाप को कहीं ना कहीं रियलाइज अवश्य होता है कि टीवी देखना या खेल कूद करना ये है तो ज़रूरी, पर अब तो महत्व एजुकेशन का है। तो फिर जो माँ बाप हैं वो एक बैलेंस रखने लगते हैं, प्यार भी देना लेकिन थोड़ी आंख भी दिखा देनी है, ताकि बच्चे थोड़ा डरें भी और अपनी एजुकेशन पे ध्यान भी दें। यही बात स्कूल में होती है। देखिए, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, टीचर्स बहुत शिकायत करते हैं कि आजकल बच्चों को संभालना बहुत ही कठिन काम हो गया है, वो पढ़ते नहीं और टीचर्स पे दबाव है पढ़ाना है, रिजल्ट तो कोई ना कोई लाना है, और वो पढ़ते नहीं है,
और तो ये हो गया रहता है जो उनको मारना भी नहीं है, हाथ नहीं उठा सकते।
और हमारे यहाँ आने वाले अगर थोड़ा बहुत डांट भी देते तो भी उनको गिल्टी फीलिंग होती है, तुमने क्यों डांट दिया। बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब उनके प्रति स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, कानून भी ऐसे बन गए हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो माँ बाप भी आके दबाव बनाएंगे, टीचर्स और मैनेजमेंट भी दबाव बनाएगा, तो ऐसे में बच्चे बिगड़ जाते हैं निश्चित रूप से, वो पढ़ेंगे नहीं। अभी बच्चों को तो पता नहीं पढ़ाई की कीमत क्या होती है, जब वो बड़े होंगे तब उन्हें आभास होगा, रियलाइजेशन होगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। ऐसा बड़े होने पर अनेक मनुष्य बहुत पश्चाताप करते हैं जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं कि उन्होंने उसको नष्ट कर दिया था। तो हमारा मैनेजमेंट, हमारा जो पारिवारिक जीवन है या जो समाज है, उसको ये जानना पड़ेगा कि हमें प्यार भी देना है, कर्तव्य भी पूर्ण करने हैं, लेकिन थोड़ा मर्यादित रखने के लिए अगर डांटना पड़े, अगर आंख दिखानी पड़े, अगर एक आधा लगाना पड़े, तो उसमें भी हर्जा नहीं। लेकिन कई लोग, क्या होता है, ये बंद क्यों किया गया कि टीचर लोग को इतना क्रोध आता था कि वो बच्चों की इतनी पिटाई कर देते थे कि वो असहनीय हो जाती थी, कहीं कहीं किसी की टांग टूट गई, किसी की आंख चली गई, कोई किसी को जोर से सिर में इतना मार दिया उसकी ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट हो गई, इसलिए कानून बनाना पड़ा। तो वास्तव में ये मनुष्य की अपनी कमजोरी के कारण कानून बना और इससे नुकसान अंततः छोटे विद्यार्थियों को हो रहा है। तो एक सुंदर संतुलन अगर इसमें सिखाया जाए, प्रेम का और जो कानून है।
चाणक्य जी ने एक बात कही है भ्रता जी, इसमें भी थोड़ा प्रकाश चाहूंगा, जो आप बैलेंस की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 1 से 5 साल तक बच्चों को बहुत लाड प्यार से रखना चाहिए, 5 से 10 साल तक उस पर थोड़ा डांट डपट से रखना चाहिए ताकि वो अनुशासन में रहें, और वो उससे जब बड़े हो जाएं, लगभग 15-16 साल के हो जाएं, तब उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो क्या ऐसा ही बैलेंस पेरेंट्स रखें अपने बच्चों के?
बिल्कुल, ये रखना ही चाहिए। 5 साल की आयु तक बच्चों को कुछ पता नहीं, और माँ बाप को प्यार की पालना उन्हें देनी है, उनका प्यार उनके लिए बहुत बड़ी पालना है, उससे उनके शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बहुत जरूरी है। अगर 5-6 साल की आयु तक बच्चों से गलत व्यवहार होता है, मान लो डांटा जाता है बहुत, या उन्हें डराया जाता है, या उन्हें मारपीट की जाती, ऐसा भी आजकल होता है, तो समझो बच्चों की मानसिक स्थिति अति दयनीय हो जाएगी, और यहीं से मानसिक स्थिति विकृति की तरफ जाने के कारण एक रिवेंजफुल फीलिंग उनके अंदर बढ़ जाएगी, बॉडी की भी ग्रोथ नहीं होगी, जब वो बड़े होंगे वो निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स के प्रति रिवेंजफुल होंगे, बदले की अग्नि में जले हुए होंगे, भले ही वो उनको भूल गया हो लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में भरा जाता है। फिर जो 6-7 साल, मैं 5 साल न कह के अब 6-7 साल कहूँगा, इससे समझो 12-13 साल तक के बच्चे हैं, उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समय ऐसा होता है जब उनकी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत सुंदर होती है, जो वो चाहें अपने कैरियर का जैसा चाहें निर्माण कर सकते हैं,
शारीरिक परिवर्तन भी
बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें केयरफुल रहना, उन्हें कुछ चीज़ें सिखाना, उनके लिए मैं तो कहूँगा कि पहले 5-7 साल माँ बाप, दूसरे 5-7 साल माँ बाप टीचर का काम करें, भले टीचर उनके अलग हैं लेकिन वो भी उन्हें टीच करें, अच्छी बात जरूर सिखाएं, घरों में अच्छी बातें हों, घरों में अच्छे स्लोगन्स लिखे हों, तो विद्यार्थी बच्चे इसको सीखें। और 12 साल से मैं कहूंगा अब 20 साल तक जी, ये आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे मनुष्य 16 17 18 19 20 का होता है, उसमें मैच्योरिटी आती है, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, अब उसको कुछ सिखाना भी है तो फ्रेंडली उसको आदेशात्मक ढंग से सिखाना गलत होता है। कॉलेजों में भी अगर टीचर उसको केवल आदेश देंगे तो बच्चे उस आदेश का पालन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए चाहे टीचर हो चाहे माँ बाप हो, अब बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं और फ्रेंडली उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, लेकिन रोब नहीं, अधिकार की फीलिंग नहीं कि तुम्हें ये करना ही है, तो प्यार और फ्रेंडली दोनों ढंग से अगर बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए तो सचमुच मनुष्य एक महान मानव बन सकता है।
कहीं ये ज्यादा ही तो स्वतंत्रता नहीं ले लेंगे, और फिर ये भी एक बात हो सकती है कि ये फिर हमारी बात नहीं मानेंगे और कहीं ज्यादा अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाएंगे, ये भी एक मानसिकता पेरेंट्स में होती है।
मानसिकता ही नहीं, ये हो ही रहा है आजकल, क्योंकि मेंटेलिटी बच्चों की थोड़ी ज्यादा बिगड़ चुकी है भिन्न भिन्न कारणों से, चाहे उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा हो गया है, चाहे इंटरनेट और टीवी से वो कुछ बहुत सीखते हैं, चाहे मोबाइल पे ऐसी ऐसी बातें उनकी अपने फ्रेंड बैकग्राउंड से होती हैं, उसमें कोई किसी तरह का कोई किस तरह का, कहें तुम्हारे माँ बाप क्या हैं, वो थोड़ा इतने पढ़े लिखे, उनको क्या आता है, तो अब हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हें गाइड करेंगे, तो कहीं कहीं मिसगाइडेंस युवकों को मिल रही है उनके फ्रेंड सर्किल की ओर से, और बहुत सब जो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए इनसे भी। हालांकि उन पर अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन उसको पिकअप करना युवकों के बस का भी नहीं रहा है, इसलिए माँ बाप को इस बात पर थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है। लेकिन यही बात अगर परिवारों में टेंशन बन जाती है तो माँ बाप बहुत परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है। पिछले 10 साल में ही मैं तो ऐसा देखता हूँ, युग बदल चुका है, मनुष्य की मेंटेलिटी बदल चुकी है, बच्चे ऐसे अनेक हो गए हैं जो माँ बाप की ना केयर करते ना उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में माँ बाप को बहुत समझदारी से कदम उठाना पड़ेगा। अगर वो उनको आदेश देंगे तो बच्चे कहीं कहीं रिवर्स होके उल्टा जवाब भी दे सकते हैं, कहीं कहीं अपमान भी करना,
और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उसमें बॉम्बे की ये खबर थी कि पेरेंट्स ने अपने ऐसे ही एक यंग बच्चे पे, जो शायद 11th या 12th में थी, उसे फेसबुक यूज करने नहीं दिया, दबाव डाला कि तुम बहुत ज्यादा लगी रहती हो, फेसबुक यूज करती हो, या जो भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इसी में बहुत ज्यादा लगी रहती हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, तो उन्होंने उसका ये बंद कर दिया। हाँ। तो उसने एक सुसाइड नोट लिखा कि मेरे पेरेंट्स ने चूंकि मुझे फेसबुक पे मतलब ज्यादा जाने नहीं दिया, मुझे यूज करने नहीं दिया, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
निश्चित रूप से माँ बाप को पुलिस को फेस करना पड़ा होगा, और कहीं कहीं कन्विंस करना सहज नहीं होता है
जी।
हालांकि सब जानते हैं
हर के लिए
बहुत बड़ी मानसिक यातना समाज में उनका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट।
तो यही एक बात समझ में नहीं आती बेटा जी, यहाँ लव और लॉ का कैसे बैलेंस रखें कि बच्चे भी सही रास्ते पे चलते रहें, दबाव भी महसूस ना करें, और साथ ही फ्रेंडली भी हम रहें।
इसमें मैं जो कुछ जानता हूं और जो मैंने देखा है बहुत सारे अनुभवों से, वो सत्य बात यह है कि माँ बाप की मानसिक स्थिति बहुत सुंदर होनी चाहिए। अगर माँ बाप के पास मन की शक्तियां हैं, जिसे हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, अगर उनके विचारों में थोड़ी प्योरिटी है, अगर उनके विचारों में व्यवहार में थोड़ी सौम्यता है, इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो पहले से ही बच्चे उनके बहुत गहरे प्रभाव में रहते हैं। बच्चों के मन पर बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना रहती है अपने पेरेंट्स के लिए, भाई हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए पूजनीय हैं, देव समान हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तब ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन जहाँ ये देखा जाता है कि बाप ही बहुत शराबी है, माँ बाप के बीच सारा दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार में कोई शांति नहीं है, छोटी-छोटी बातों पे मन मुटाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी माँ बाप के प्रति रिगार्ड जो है वो बहुत कम हो जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि वो आज्ञाकारी नहीं रहते, फिर वो अपना दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, और सारी समस्याएँ यहाँ पैदा होती हैं। मैंने अपने यहाँ आने वाले भी बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, अगर उनकी मनोस्थिति बहुत सुंदर है तो बच्चे बस समझो देवता हैं, और अगर उनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे सामना कर रहे हैं, तो फिर ये बैलेंस की बात चलती नहीं आगे।
मतलब पेरेंट्स के ऊपर ये बात आ जाती है कि अपनी मनोस्थिति, जैसे आपने कहा, कि बहुत श्रेष्ठ बना लें, और साथ ही साथ ये उन्हें सिखाएगा कि कैसे वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के बीच। तो भ्राता जी, ये जो एक मनोस्थिति की बात आप कर रहे हैं, चलिए विषय तो सचमुच बहुत गहरा है, लेकिन संक्षेप में यदि सभी अपनी मनोस्थिति को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ऊँचा रखना चाहते हैं, बच्चों के आगे एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें?
देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो मात्र इसका एक साधन है ही, पर नॉर्मल रूप से परिवारों में उन्हें कुछ डिसिप्लिन आपस में बनाने ही चाहिए, जैसे थोड़ी सी प्योरिटी मेंटेन करना, विषय वासनाओं के पीछे ज्यादा भागते नहीं रहना, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं और वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं इन सब चीज़ों में, उनके अंदर भी वासनाएं जागृत हो रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता, तो अगर उनके माँ बाप ज़्यादा वासनाग्रस्त होंगे, एक तो इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, इसलिए थोड़ा संयमित जीवन। अब आयु बड़ी हो गई, मान लो 40 साल के बाहर निकल चुके हैं, आपने 15-20 साल ग्रस्त के बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर लिए हैं, अब थोड़ा सा संयमित जीवन जीना पड़ेगा, एक तो ये बात। दूसरा, माँ बाप कोशिश करें कि टकराव आपस में बाह्य रूप से ना हो, मतलब दिखाई दे रहा हो वो बच्चों को कि हमारे मम्मी पापा तो लड़ते ही रहते हैं, इस पे थोड़ा सा और गौर करना पड़ेगा कि आपस में थोड़ा प्रेम की वार्तालाप हो, और जो मन मुटाव है अगर है भी, उसको इतना बाह्य रूप न दे दिया जाए कि वो प्रचार में आ जाए, दूसरों को पता लग जाए। तीसरी चीज, अपने घर के माहौल को थोड़ा सुंदर बनाना चाहिए। मान लो माँ बाप ही टीवी पर सारा दिन बैठे हैं, फादर ही लैपटॉप लेके बैठा क्या क्या देख रहा है, तो बच्चे भी शुरू कर देंगे। तो घरों में ये जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, माँ बाप को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उनका हर व्यवहार, उनका बोलने का तरीका, वो क्या देखते हैं, उनकी इच्छाएं कितनी हैं, वो मेटेरियलिज्म की ओर कितना दौड़ रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, इस सब का इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। कभी कभी माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें क्या पता, लेकिन बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और वो हर चीज़ सीख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें अपनाएंगे, और अगर वो स्पिरिचुअल है, अगर वो राजयोग का अभ्यास कर रहा है परिवार, तो उनको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और अपने घर के माहौल में थोड़ी दिव्यता लानी चाहिए, ताकि औरों के घरों के माहौल से इनके घर का माहौल बिल्कुल अलग हो, अलौकिक हो। तो निश्चित रूप से बच्चों और माँ बाप के बीच में बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा और एक सुंदर संतुलित जीवन चलता रहेगा।
क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्राता जी हमारे पास जो फोन कॉल्स आजकल आ रहे हैं या ईमेल आ रहे हैं, वो यही हैं कि बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, अब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम उन्हें पढ़ने को कहते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, हम उन पर ऊपर से दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये जो आपने बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी पेरेंट्स के लिए कि इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से बच्चे भी उन्हें फॉलो करेंगे, आदर्श रूप में मानेंगे।
हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं और फील करते हैं, और अपने जो हमारे व्यवहार चलते हैं उसमें भी हम इसको अप्लाई करते हैं। हम बोलते तो हैं
जी,
और काम कराने के लिए, करने के लिए साथियों से हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन हमारे बोल में प्रभाव आता है जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है। जैसे हम स्वमान की प्रैक्टिस सिखाते हैं सबको, स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने से बोल में पावर आ जाती है। ऐसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करते हैं, इन प्रैक्टिसेज करने से जो कुछ हम बोलेंगे बहुत ही शक्तिशाली रूप से दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति बोलता कम है, ये नहीं कि वो लेक्चर ही देता रहे बच्चों को। कभी कभी माँ बाप ये भी गलती कर देते हैं, कोई बात हो गई तो आधा घंटा सुना रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो और कहीं उनको लेक्चर देने का मौका नहीं मिलता तो बच्चों को ही देने लगते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने बोल में प्रभाव को बढ़ाएं थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, थ्रू स्वमान, तो ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में से 10 लोग आपकी नहीं मान रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ेंगे नहीं।
कल भ्राता जी आप जो कह रहे थे, अभी जब आपने कहा कि हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तो कल एक चर्चा आप कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रही थी वो बात मुझे, कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में जब रहते हैं, हमारे बहुत सारे जो नए दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो जानना जरूर चाहेंगे कि आत्मिक स्थिति या स्वमान की स्थिति क्या है। मैं जानता हूं कि ये बहुत विस्तृत विषय है, फिर भी संक्षेप में जरूर थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे इन दोनों स्थितियों का अभ्यास करें, ताकि एक मानसिक स्थिति की जो हमारी बात चल रही है वो सुदृढ़ हो सके।
देखिए, हमारे धर्म में और इंडियन फिलोसॉफी में तो प्रारंभ से ही वेदों के ज्ञान से, उपनिषद, दर्शन
जी,
पहले से ही ये मनुष्य को अवेयरनेस दी गई थी, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन बात ये हुई कि प्रैक्टिकल जीवन में लाया नहीं गया, और जिनको प्रैक्टिकल जीवन में लाना था उनके लिए विधान था, वो संन्यास करें, जंगल में जाएं, गुफाओं में रहें, साधना करें, तपस्या करें, तो ये चीज़ जीवन में आ जाएगी। लेकिन यही चीज़ एक आम व्यक्ति के लिए भी है, और परिवार में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। ये अवेयरनेस किसी ने आज तक नहीं दी,
इसीलिए शायद विभक्त हो गया कि धर्म शायद इनके लिए है और गृहस्थियों के लिए जो धर्म है वो गृहस्थ धर्म अलग है,
अलग हो गया। तो इससे नुकसान बहुत हो गया, क्योंकि हैं तो हम सब आत्माएं, कोई माने या ना माने, कोई तर्क दे या कुछ भी करे, कुतर्क करे, हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा में ये 7 मूल क्वालिटीज होती हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप और आनंद स्वरूप है। अभी जब हमें आत्मा की अवेयरनेस नहीं रही, जब मनुष्य ने सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास नहीं किया, तो क्या हुआ, इन 7 क्वालिटीज में गिरावट आती गई, ज्ञान उसका समाप्त होता गया, शांति समाप्त होती गई, प्रेम, सुख, शक्तियाँ सब समाप्त होती गई। अभी इसके जिम्मेदार यही बातें हैं कि विद्वता के लेवल पे लोग शास्त्रार्थ करते रहे, डिबेट करते रहे, आत्मा ये है, वो है, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन आत्मअभिमानी होने की साधना लोगों को नहीं सिखाई। अब जब भगवान इस धरा पर आए, उसने सत्य ज्ञान दिया, और आत्मा के ज्ञान की ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी, तुम आत्माएं हो, ज्योति हो, यहाँ हो, तुम ये शरीर नहीं हो, छोटी सी बात, 15 मिनट में सारा ही आत्मा का ज्ञान पूरा कर दिया, जिसके लिए दर्शन लिखे गए हैं, उपनिषद भरे पड़े हैं, तो ये नहीं वो नहीं, और फिर कहा अब इसकी प्रैक्टिस करो
जी।
तो जिन्होंने सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस प्रारंभ की, मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं मालिक हूँ, इस देह का संचालन करने वाली मैं आत्मा हूँ, और मेरी ये 7 क्वालिटीज हैं, जिन्होंने ये एक एक क्वालिटी को स्वीकार किया, अब मैं केवल एक ही लूँगा, बाकी चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, इसे हमें स्वीकार करना है कि सुख मेरा मूल स्वरूप है, मैं बहुत सुखी हूँ, आत्मा की नेचर ही सुख है, तो मुझे दुख आ ही नहीं सकता, अपने को एक्सेप्ट करें, मेरा स्वरूप तो सुख में है, दुख में मेरा स्वरूप है ही नहीं, कुछ भी बात हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, मैं आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, तो सुख की जो डिग्री है वो बढ़ने लगेगी, दुख की डिग्री कम होने लगेगी, इस तरह सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने से ये सारी क्वालिटी हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं, इसी से सुंदर बैलेंस भी आता है
जी।
तो इसको जीवन में अपनाना ही होगा।
जब भी भ्राता जी आप चर्चा करते हैं राजयोग की, तो बहुत गहरी अनुभूति होती है, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति अवश्य होती होगी, इसीलिए निश्चित रूप से इसकी गहराई से हम लोग अनुभूति करेंगे। और लगता है कि ये जो 7 गुण आपने बताए जीवन के मूल गुण हैं, और यदि हम ऐसे ही अभ्यास करें जैसे आपने अभी कराया, निश्चित रूप से सारा जीवन ही गुणों से संपन्न हो जाएगा। प्रताप जी, स्वमान पे भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा, आप बार बार स्वमान की भी चर्चा करते हैं, स्वमान वास्तव में क्या है और कैसे इसकी प्रैक्टिस करें संक्षेप में?
देखिए, हम भगवान के बच्चे हैं
जी।
आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप ही ये है कि वो हमारा परमपिता है, सभी जगह ये बात एकमत से स्वीकार की जाती है, भले कुछ लोग उसको अपना मालिक कहते हैं या क्रिश्चियंस में उसको गॉड फादर कहा गया, ये तो लैंग्वेज की बात है, उससे हम जुड़े हुए हैं, वो हमारा परमपिता है
जी।
तो जिनका पिता ही शांति का सागर हो, वो आत्माएं अशांत नहीं, वो भी शांति का स्वरूप है। तो हमें ये अवेयरनेस अपने जीवन में बढ़ानी होती है, हम भगवान के बच्चे हैं, मात्र भक्त नहीं। गड़बड़ियां हो गई कि मनुष्य ने अपने को हाथ जोड़े, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ, भक्त हूँ, दीन हूँ, नीच हूँ, ये फीलिंग रखी,
अपने आप को जैसे दूर कर
दूर
दिया,
कर दिया। अब भगवान ने अवेयरनेस दी, नो तुम मेरे बच्चे हो, मैं भगवान, मैं सबसे बड़ी हस्ती, तुम भी बहुत महान हो, भला भगवान के बच्चे नीच पापी कैसे हो सकते हैं, तुम महान हो, ये अवेयरनेस दी। तो ये स्वीकार करना, मैं एक महान आत्मा हूँ, बहुत सटिल लेवल पर, तो मानताएं जीवन में आने लगती हैं, अभिमान नष्ट होने लगता है। कई लोग इसको अभिमान मान सकते हैं, लेकिन इससे अभिमान नष्ट होता है, क्योंकि जिसमें अभिमान है वो तो महान है ही नहीं।
शायद महानता को वो लोग इस दृष्टि से नहीं समझते प्रताप जी, कि भगवान के बच्चे इसलिए महान है, वो शायद दुनियावी दृष्टि से
भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, मैं तो महान हूँ, तो अहंकार आ जाता है, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, तो हमारे अंदर इससे ग्रेटनेस आती जाएगी, महानता आती जाएगी, इसको स्वमान कहते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज है, भगवान जो हमारा परमपिता है वो सर्वशक्तिवान है। अब जैसे शेर का बच्चा शेर, तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी अवेयरनेस में रहना, ये दूसरा स्वमान हो गया। तो इस स्वमान की प्रैक्टिस, हमारी सोल कॉन्शियसनेस की जो प्रैक्टिस हम करते हैं, उसको और सुंदर बना देती है और बिल्कुल व्यवहारिक बना देती है, कि जो व्यक्ति इस फीलिंग में रहेगा मैं एक महान आत्मा हूँ, तो वो जरूर चिंतन करेगा, अब मेरा व्यवहार मेरी महानता के अनुरूप होना चाहिए, अब मेरे बोल वैसे ही होने चाहिए जैसा मैं महान हूँ, अब मेरे कर्म बिल्कुल सभी को मेरी महानता का दिग्दर्शन कराएं, तो इससे व्यवहार बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, तो सोल कॉन्शियसनेस की बड़ी हायर स्टेज हो जाएगी, स्वमान की स्थिति।
बहुत सुंदर भ्राता जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने इस सोल कॉन्शियस स्टेज को और स्वमान को स्पष्ट किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम दर्शकों को ये स्पष्ट अवश्य हुआ होगा और आप सब लंबे समय से इन शब्दों को सुन भी रहे हैं, तो आज से इनका अभ्यास भी आप शुरू कर सकते हैं। भ्राता जी, एक बहुत ही सुंदर चर्चा हमारी चल रही है, बैलेंस से हमने शुरुआत की थी और मुझे लगता है उसे हमें और आगे बढ़ाना ही होगा, और निश्चित रूप से बैलेंस जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जब भ्राता जी चर्चा कर रहे थे कि शेर का बच्चा शेर के जैसा होता है, जब वो स्वमान की बात कर रहे थे, तो एक शेर का बच्चा बचपन में गुम हो गया और वो भेड़ों के झुंड में जा मिला। अब जब भेड़ों के साथ रहने लगा वो, तो उसकी आवाज़, उसका व्यवहार सब कुछ वैसा ही हो गया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब भी वो उसी तरह से बर्ताव किया करता था जैसे कि भेड़ बकरियां किया करते हैं। एक दिन भेड़ों के झुंड में शेरों ने देखा कि कैसे भेड़ों के झुंड में एक शेर घूम रहा है। उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाला, वो बहुत घबरा रहा था जैसे भेड़ बकरियां डरते हैं शेर को देख करके, लेकिन शेरों ने उन्हें याद दिलाया कि तुम वास्तव में शेर की संतान हो, देखो तुम हमारे जैसे ही हो। उसे पानी के नज़दीक ले जाकर उसके चेहरा दिखाया उन्होंने, तो धीरे धीरे जब उसे लगा कि सचमुच मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ, तो उसने गर्जना करनी शुरू कर दी। शायद हम सब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम ये भूल चुके हैं कि हम उस परम सत्य के, उस सर्वशक्तिवान की संतान है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, और जैसे वो सर्वशक्तिवान है हम भी वैसे ही शक्तिशाली हैं, जैसे वो सुखों का सागर है हमारे अंदर भी वही सुख है, वही शांति है। शायद अब हमें अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम उसकी संतान हैं, तो बहुत सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आपका जीवन ऐसे ही सुख, आनंद और शांति से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, नमस्कार।